पृष्ठ संख्या 45। अगला टॉपिक विचार। भारतीय समाज में भी पिछले 1.5 दशक से बाजार को केंद्र में रखकर जहां एक तरफ भूमंडलीकरण की चर्चा जोरों से चल रही है, वहीं विचार को लेकर उत्तर आधुनिकता की। संयोग यह भी है कि ये पद जितने अधिक चर्चित, लोकप्रिय एवं बहसधर्मी हैं, उतने ही बदनाम और आपत्तिजनक भी। दोनों के विरोधी और समर्थक अक्सर आमने सामने दिखाई पड़ते रहते हैं। भारत दोनों घटनाओं का समान रूप से साक्षी एवं वाहक है। अर्थात भारत जितना और जिन अर्थों में भूमंडलीकृत भारत है, लगभग उतना ही उत्तर आधुनिक भी। यहीं यह भी साफ हो जाना चाहिए कि ना तो भारत कभी पूर्ण रूप से भूमंडलीकृत हुआ है और ना ही इसकी संभावना है। दूसरी ओर कहने वाले ठीक ही कहते हैं कि जब भारत में अभी आधुनिकता ही नहीं आई तो उत्तर आधुनिकता क्या आएगी। तब सवाल यह उठता है कि आज के भारतीय समाज का चरित्र कैसा है, हमारे चिंतन और लेखन में मूल रूप से क्या चल रहा है, हम कितने आधुनिक हैं अथवा रहे हैं, आखिर क्या हम उत्तर आधुनिक जीवन जीने लगे हैं, क्या यूरोपीय जीवन मूल्य और भारतीय जीवन दृष्टि में किसी तरह की द्वंद्व जैसी स्थिति है। आज भारतीय समाज की चिंतक लेखक बिरादरी क्या सोच रही है, क्या भारत का सामाजिक अथवा सांस्कृतिक ढांचा कुछ बदल पाया है। अगला पैराग्राफ। 20वीं सदी का अंतिम दशक भारत के लिए भी वैचारिक उथल पुथल का समय साबित हुआ। यही स्थिति एक तरह से आज भी बनी हुई है। उत्तर आधुनिक बहसों, अध्ययनों एवं दृष्टियों ने एक से बढ़कर एक स्थापनाएं, घोषणाएं एवं भविष्यवाणियां की। मसलन इतिहास का अंत, कौमा विचार का अंत, कौमा आख्यान का अंत और पाठ की सत्ता जैसी बातें आज विमर्श के केंद्रीय मुद्दे बन गए हैं। अस्मितावादी चिंतन का हाल यह है कि अब यह नस्ल, लिंग और धर्म से आगे बढ़कर जाति, वर्ण और उपजाति तक फैल चुका है। साहित्यिक रचनाओं अथवा आलोचनाओं में अनुभूति की प्रामाणिकता पर बल दिया जाने लगा है। दलित लेखन, स्त्री लेखन और आदिवासी लेखन को प्रोत्साहन मिलना शुरू हुआ है। आज दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श और अल्पसंख्यक विमर्श के एक अलग पाठ एवं आलोचना दृष्टि विकसित की जा रही है। ये प्रश्न विमर्शों के केंद्र बन चुके हैं, तो इसके पीछे भी वह उत्तर आधुनिक दृष्टि ही है जिसमें महाख्यानों एवं एक विश्व दृष्टि का निषेध किया गया है। बहुलतावाद को विश्व की यथार्थ दृष्टि मानी गई है जहां विविधता को सहज ही स्वीकारा गया है। अब तक हाशिए पर रहे मुद्दे और समाज केंद्र में स्थापित हो रहे हैं। अब केंद्र एवं विराट की अवधारणा भी विखंडित हो चुकी है। अब तक जो भी केंद्र माना जाता रहा है, उसकी सच्चाई प्रकट होने के बावजूद जो हाशिए पर रहे हैं, वे वहां पहुंचने के लिए संघर्षरत हैं। यह आज के समय का सच है कि सत्ता और केंद्र का निषेध करते हुए भी सभी वहीं पहुंचना चाहते हैं। पृष्ठ संख्या 46। केंद्र और हाशिए की बहस आज सबसे अधिक चर्चा में है। हर समाज, भाषा और साहित्य में इसकी झलक देखी जा सकती है। जैसे जैसे समाज में बदलाव आ रहा है, साहित्य एवं आलोचना दृष्टि भी वैसे वैसे तेजी के साथ बदल रही है। आज समाज जिस तरह से बाजार से प्रभावित है, साहित्य और विचार भी उसी तरह इस भूमंडलीकृत बाजार से प्रभावित है। पाठक आज ग्राहक में रूपांतरित कर दिया गया है। गुणवत्ता और असली की कसौटी संदर्भित वस्तु और विचार का विज्ञापन बन चुका है। अर्थात अब बाजार विचार और वस्तु दोनों को अपने हिसाब से बनाने, बेचने और ख़त्म करने लगा है। धीरे धीरे यह जुमला प्रचलित हो गया है कि अब विचारों से नहीं, दुनिया वस्तुओं से बदल रही है। विज्ञान और तकनीक इस काम में सबसे अधिक मददगार साबित हो रहे हैं। यह अलग प्रश्न है कि क्या सचमुच विचार का स्थान वस्तु ले सकती है? खैर, इसका उत्तर तो आने वाला समय ही सही दे पाएगा। लेकिन जिस तरह विचार और इतिहास के अंत की बात हो रही है, उसके निहितार्थ जितने गहरे हैं, उतने ही घातक भी। सवाल है कि आखिर विचार के अंत की बात ही क्यों चली? क्यों समाजवादी मूल्यों के अंत अथवा हाशिए पर चले जाने की घोषणा की जाने लगी? कहीं इसके पीछे नई आर्थिक नीतियाँ और गतिविधियाँ तो काम नहीं कर रहीं? क्योंकि बाजार तभी फैल सकता है जब उसकी मांग के अनुरूप विचार समाज में फैले। यह उपभोक्तावादी दृष्टि जो आज सर्वत्र फैलाई जा रही है, आखिर उसके पीछे वस्तुओं ब्रैकेट में पूंजीवादी का व्यापार ही तो नहीं है? अगला पैराग्राफ। जैसा कि हम जानते हैं, अर्थ और संस्कृति के बीच गहरा संबंध है। संस्कृति जिन तत्वों से बनती है, उनमें सत्ता, शासन, केंद्र एवं धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। इन सब तत्वों के पीछे है अर्थ की शक्ति। यही वजह है कि आप अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए 19वीं या 18वीं सदी की रणनीति अपनाने की ज़रूरत किसी भी वर्चस्ववादी शक्ति को नहीं पड़ रही है। यह शक्ति चाहे अमेरिकी हो, पितृसत्ता हो, ब्राह्मणवाद हो या नस्लवादी। पूंजी और तकनीक की शक्ति ने शोषण को पहले से बहुत अधिक आसान और सूक्ष्म कर दिया है। भूमंडलीकरण की इस प्रक्रिया में संस्कृतियां भी आपस में संवाद से अधिक विवाद कर रही हैं, जबकि होना इसके उलट चाहिए था। वजह साफ है कि इस बाजार केंद्रित भूमंडलीकरण का यह लक्ष्य ही नहीं है कि संस्कृतियों में और समाजों में संवाद हो। इसका तो मूल मकसद ही है बाजार की तलाश और मुनाफाधर्मी उद्योगों की स्थापना। विचारहीन इस भूमंडलीकरण संस्कृति पर दुख जताते हुए प्रख्यात सामाजिक और सांस्कृतिक चिंतक किशन पटनायक लिखते हैं, डैश इन्वर्टेड कॉमा शुरू, अब मनुष्य जाति को एक शास्त्र विहीन विचार विहीन युग में ढकेला जा रहा है। हम 21वीं सदी के आरंभ में अज्ञान के एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ। विकल्पहीन नहीं है दुनिया, किशन पटनायक, पृष्ठ संख्या 20। पृष्ठ संख्या 47। अगला पैराग्राफ। अजीब बात है कि एक तरफ 21वीं सदी को ज्ञान की सदी बनाने की होड़ मची हुई है, तो दूसरी तरफ इसे अज्ञान का युग भी उतनी ही शिद्दत के साथ बताया जा रहा है। विचार तथा ज्ञान मानव को मुक्त करता है। दूसरे शब्दों में, हम उसे ज्ञान या विचार कह ही नहीं सकते जिसमें मुक्ति की संभावना ना हो। ऐसा नहीं है कि आज विचार की महत्ता को स्वीकारा ही नहीं जा रहा है। सभाएं, गोष्ठियां, बड़े बड़े सम्मेलन इसके ज्वलंत उदाहरण हैं कि विचार के महत्व को समझा जा रहा है। लेकिन दिक्कत यही है कि यह सब कुछ एक निर्धारित प्रोजेक्ट के तहत ही हो रहा है। उदाहरण के लिए, एक दिन यह घोषणा की जाती है कि अमुक लेखक या लेखिका की रचना विश्व स्तर की है और उसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी प्रदान कर दिया जाता है, लेकिन अगले ही दिन यह भी घोषित कर दिया जाता है कि लेखिका या लेखक के विचार अव्यवहारिक एवं विकास विरोधी हैं। अर्थात, वह महान विचार जिसे विश्व स्तरीय माना गया, पुस्तक बाजार में तब्दील होकर रह जाता है। ऐसी स्थिति में विचार का जो लक्ष्य मानवीय संस्कृति और मानववाद रहा है, उसका ह्रास ही देखा जा सकता है, विकास नहीं। विचार, ज्ञान और मानव संस्कृति की टूटती धारा पर चिंता जताते हुए किशन पटनायक पुनः लिखते हैं, डैश इन्वर्टेड कॉमा शुरू, संस्कृति का तकाजा है कि आर्थिक नीतियाँ और विकास की प्रणाली मनुष्य के सांस्कृतिक लक्ष्यों का उल्लंघन न करें। अतः हमारे युग की दो चुनौतियाँ हैं, क मनुष्य की संस्कृति और सांस्कृतिक मानदंडों को हम नए सिरे से परिभाषित करें, ख व्यापार और विकास की नीतियों को सांस्कृतिक लक्ष्यों के अनुरूप बनाएं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ। विकल्पहीन नहीं है दुनिया, किशन पटनायक, पृष्ठ संख्या 34। अगला पैराग्राफ। एक तरफ जहां सांस्कृतिक लक्ष्यों के अनुरूप आर्थिक नीतियों को तय करने की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ संस्कृति मात्र पर कई सवाल उठ रहे हैं। विखंडनवादी एवं संरचनावादी विचारकों ने संस्कृति, साहित्य और भाषा के प्रश्न पर अपने अपने तरीके से विचार किया है। संस्कृति के स्थान पर संस्कृतियों, परंपरा के स्थान पर परंपराओं और अस्मिता के स्थान पर अस्मिताओं की बात हो रही है। इसके साथ ही पूंजीवादी आधुनिकता को भी गलत और एकांगी ठहराया जाने लगा है। पाठ की अनंत संभावनाओं के पीछे का मूल तर्क यही है कि किसी पाठ एवं विचार का कोई एक निश्चित अर्थ और परिवेश हो ही नहीं सकता। इतिहास भी चूंकि वर्चस्ववादी शक्तियों द्वारा लिखा गया होता है, अतः वह किसी संस्कृति और समाज विशेष की वास्तविक सच्चाई उद्घाटित कर ही नहीं सकता। उदाहरण के लिए, स्त्रियों के प्रश्न पर समूचा विश्व साहित्य या तो मौन रहा है या फिर उलझन में। पितृसत्ता सदियों से चली आ रही है। विश्व की कोई भी भाषा ऐसी नहीं है जिसमें पितृसत्तात्मक मूल्य और साजिश ना छुपी हो। अतः आज विचार, साहित्य और संस्कृति के इतिहास भी पुनर्समीक्षा की मांग करते हैं। पृष्ठ संख्या 48।